संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में प्रबल भगवान महान विनित हूँ। समय सार परमागम की 308 से 311 गाथाओं पर पूज्य गुरुदेव श्री जी के प्रवचन हुए, वो प्रवचनों का अंश अपन पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 218 पर दूसरे पैरे से बात आरंभ करनी है। एक बात बहुत गंभीरता से विचार करने योग्य है कि आचार्य अमृतचंद ने जो 108 और 9वीं गाथा की टीका में जो ये शब्द डाला है कि जीवो ही तावत कृमि नियमात्म परिणामी रुतबद्ध मानो जीवा ये नो जीवा और अजीवोपी कृमि नियमात्म परिणामी रुतबद्ध मानो अजीवा ये नो जीवा। तो इसमें कृम में नियमित आत्म परिणामी इन शब्दों की क्या जरूरत थी, क्योंकि बात तो सिर्फ इतनी सी है कि जीव अजीव का कर्ता नहीं है और अजीव जीव का कर्ता नहीं है। सिद्धांत के रूप में बात कहें तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और इसलिए अपन 2-3 दिन से बराबर इस बात को पर जोर दे रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वयं के प्रणमन का कर्ता वो स्वयं है, क्योंकि यदि हम उसे निमित्त को कर्ता मानेंगे तो परद्रव्य का कर्तृत्व आ जाएगा। अब स्वयं का कर्ता स्वयं ही है, ये बात उन्हें बताना है कि प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य स्वयं करे और करने में वो समर्थ है। कल अपन ने वो उदाहरण देकर के अमेरिका का कि प्रत्येक आदमी अपने घर को और घर के सामने की सड़क को साफ कर ले तो पूरा देश एक दिन में साफ हो सकता है, और हम करें तो कुछ नहीं और सारे देश की चिंता करें और किसी दूसरों को ही गाली देते रहें, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। यहां आचार्य कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं को करे, इससे बढ़िया व्यवस्था कोई दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर ऐसा ईश्वर खोजना पड़े कि जो सारे जगत को करे, और जगत में कार्य तो परस्पर विरुद्ध बहुत हैं, तो वो कैसे औचित्य ठहरेगा, है ना? कहते हैं कि कुमार चाहे बरसना, किसान चाहे बरसना और धोबी चाहे धूप, माने धूप, भगवान क्या करे, बरसाए कि धूप निकाले। धोबी को अपने कपड़े सुखाने हैं इसलिए धूप चाहता है, किसान को अपने खेत की करना है इसलिए वो बरसात चाहता है। ऐसे बहुत बहुत परस्पर विरुद्ध कार्य हैं और वो एक साथ एक व्यक्ति कैसे करेगा, क्यों करेगा, उसका कोई प्रयोजन होना चाहिए, बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी। इसलिए एक द्रव्य स्वयं का करता है। अभी इतनी सी बात इसमें स्पष्ट करनी थी। और गुरुदेव श्री भी अपन ने जो कल पढ़ा था वहां से यहां तक अपन आए हैं, वो भी यही कहते आ रहे हैं। तो फिर ये कृमि नियमात्म परिणाम ही रुतबद्ध मानो, इस शब्द की क्या जरूरत थी? मैंने बहुत इस पर गंभीरता से विचार किया और दिमाग में विचार चलता ही रहा कभी इसमें संतोषजनक उत्तर आना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि आचार्य अमृतचंद को ऐसा लगा कि अब इस जीव को कम से कम दूसरों के कुछ करने का भार माथे पे नहीं रहेगा, तो अपना करने का भाव तो रहेगा ही रहेगा। ये जीव पूरी तरह निर्भार नहीं हो पाएगा और बल्कि और पक्की जिम्मेवारी हो जाएगी। क्या और ये जिम्मेवारी का विस्तार होते देर नहीं लगती है, पर जब हम ये कहते हैं कि भैया तुम दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ, वे अपना करेंगे, तुम अपना करो, तो बहुत लोग मान लेते कि हाँ हम तो ऐसा ही है, हमारी ड्यूटी ये है कि जो दाना जो डाक आए स्मारक में वो देखना, बस वही देखते हैं और उसी का जिसकी है उसको दे देना, उसका जवाब देना हमारी ड्यूटी नहीं है, हम वही करते हैं, सब अपने ही अपना काम करते हैं। शांति जी कहें मेरा काम है पढ़ाना है आत्मख्याति, तो मैं पढ़ाता हूं, अब मैं नए चक्र में तो अटांग नहीं हराता हूं। तो ये तो लोक में व्यवस्था सबसे बढ़िया ही है ना, ये सब अपना अपना काम करते हैं, यहां भी अपना अपना बटा हुआ है और सब अपनी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं शांति से। तो ये बात तो आप बिल्कुल सही कहते हैं, कहते भैया तुम जितनी बात कह रहे हो जा, इसमें कोई दम नहीं है। गुरुदेव ये नहीं बताना चाहते हैं, ना अमृतचंदे बताना चाहते हैं, ना कुंदकुंदे बताना चाहते हैं, कि तुम जिसे अपना काम कह रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, वो तो पर का ही काम है। क्या है? तुमने पर के कामों में के दो हिस्से कर लिए, कुछ को पर का काम और कुछ को अपना काम, उसी में हैं वे दोनों पर के काम, अपने नहीं है, पर ऐसे हिस्से कर लिए हैं और ऐसा उसने बंटवारा कर लिया कि मैं अपना ही करता हूं। और हमने तो कुंड कुंड की बात मान ली कि जीव प्रत्येक जीव अपना काम करता है, पर का करता नहीं, अपनी प्रजाओं का करता वो स्वयं है, तो हम भी अपने ही तो करते हैं, दूसरे का कहां करते हैं। ये नहीं है, हाँ ये नहीं है, ये जो तुम जिसे अपना कह के कर रहे हो वो अपना नहीं है, वो तो पर का है। कि ठीक है, अब हमें नौकरी छोड़नी पड़ेगी, अब वो पर का काम है, अब हम उसे नहीं करें क्यों, तो फिर अपने आत्मा का कल्याण करने के पहले इधर नौकरी छोड़नी पड़ेगी, दुकानदारी बंद करनी पड़ेगी, ये धंधा पानी सब बंद करना पड़ेगा ना, क्यों निकंदी साहब, क्योंकि ये सब पर का काम है और पर का कार्य हम जब तक करते रहेंगे क्यों, तब तक फिर अपना काम कर नहीं सकते, तो फिर गृहस्थ में तो धर्म हो ही नहीं सकता, क्यों फिर तो सब छोड़ दो तब धर्म होगा। ऐसा इसको लगता है, लेकिन हमारे तो शास्त्रों में लिखा है भरत चक्रवर्ती जैसे सखंड को संभालते हुए भी सम्यक दृष्टि और ज्ञानी थे, क्यों, अरे भाई ऐसे बंटवारे से काम नहीं चलेगा, और ये काम छोड़ने की बात नहीं, अभी तो तू ज्ञान में और श्रद्धा में ये निर्णय कर, क्या समझता है कि हम ये कह रहे हैं कि तुम पर का काम मत करो, पर के काम में हस्तक्षेप मत करो, नहीं तर सब काम बिगड़ने लगेंगे। अब मैं इस गाथाओं का अर्थ कर रहा हूं, अब मैं इन गाथाओं को अर्थ छोड़ करके जिस गाथा का अर्थ आप कर रहे हैं उसका कहने लग जाऊं, तो मेरी गाथा रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी, क्या ये जो लोक की दृष्टि से अपने और पराई की जो बात है, अरे हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम इनका काम में हस्तक्षेप मत करो, हम तो ये कह रहे हैं कि तुमने आज तक परके में कुछ किया ही नहीं, कर सकते ही नहीं, वरना भविष्य में कभी कर सकोगे। वो हमारी चिंता नहीं है कि तुम हस्तक्षेप करके व्यवस्था बिगाड़ो, क्या, क्योंकि वो तो कर ही नहीं सकते, वो तो हो ही नहीं सकता है? हमारी तो ये है कि तुम अपनी मान्यता सुधार के अपना कल्याण करो, कि तुम दूसरे के काम को करने को जाओगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। एक ऑफिस में एक कर्मचारी ने एप्लीकेशन दी, क्लर्क था कि मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, क्या, और इसलिए मुझे 5 दिन की छुट्टी दी जाए। तो साहब ने एकदम मना कर दिया कि तुम्हें मालूम नहीं 31 मार्च आ रहा है, 31 मार्च को सब क्लोज करना है, इनकम टैक्स में फाइल जमा करानी है। और तुम कहते हो हमें अभी छुट्टी दे दें, जब ये काम निपट जाएगा तब उसके बाद तुम 5 दिन की नहीं 10 दिन की छुट्टी पे जाना। अभी तुम्हें किसी कीमत पर छुट्टी, मैंने साहब रिजर्वेशन करा लिया, तुमने रिजर्वेशन करा लिया, फिर मैं कहते हैं क्यों नहीं, अब तो साहब मुझे जाना ही पड़ेगा। तो छुट्टी लेने के बाद रिजर्वेशन कराना चाहिए था ना, जब से मिलती तब से तो छुट्टी लुट्टी तुम हमको सूचना दे रहा है, तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्यों कि साहब जा रहे हैं। अरे ऐसे तो साहब लोग अपने ऑफिस में ऐसी सूचना तो उनको भी देनी पड़ती है, क्यों ऐसा नहीं चलेगा। जब उसे छुट्टी नहीं दी गई तो दूसरा किलर का आया उसके ही साथी के साथ, एक निवेदन है कि क्या है उसको जाने दो, उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है, कैसी बात करता है, उसे जाने दे, ये काम कौन करेगा, के साथ मैं करूं, उसका काम भी मैं निपटा, आप उसे जान क्या कि तू कर लेगा, तेरा काम कौन करेगा, क्या तेरा काम कौन करेगा, क्यों मैं अपना भी कर लूंगा और उसका भी कर लेगा, दोनों काम मैं कर लूंगा। अच्छा हमें तो पता ही नहीं था कि तू दोनों काम कर सकता है, हमने दर्श में ही एक आदमी ज्यादा रखा, क्यों अब उसकी हम परमानेंट छुट्टी कर दे, क्यों कि तू अपना काम भी कर सकता है और उसका काम भी कर सकता है, तो एक आदमी दो का काम कर सकता है तो ये कोई संस्था के पास किसी व्यक्ति के पास कोई इतने ज्यादा पैसा वो हो रहा है कि इसके लिए दो दो आदमी रखे। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तू अपना भी कर लेगा और प्रदीप का भी कर लेगा, अरे प्रदीप का करेगा तो अपना कब करेगा, कोई अपना देव का काम कोई कम नहीं है, हरेक के पास अपना अपना काम भरपूर है। हम तो ये समझते हैं कि 8 घंटे की तेरी ड्यूटी है और तेरा काम 9 घंटे में निपटे, इतना काम तेरे पास होना चाहिए, तब तू शांति से काम करेगा, नहीं तो तू मैं डिस्टर्बेंस करेगा, एक दूसरे को गप्पे लगाएगा, क्यों तो ये ऐसा भ्रम पाले है कि मैं अपना काम भी करता हूं और पर का भी करता हूं। वो कहते करता है, हमारी ये समस्या ही नहीं है, वस्तु के स्वरूप में तू पर का काम कर ही नहीं सकता, आज तक तूने कुछ पर में किया ही नहीं है और ना भविष्य में हमें कोई ऐसी फिक्र है, तू करेगा ही नहीं। हमारी समस्या वस्तु की व्यवस्था बिगड़ने की नहीं है, हमारी समस्या तेरे भ्रम को मिटाने की है कि तूने जो ऐसा भ्रम मान रखा है वो सही। तो अब ये रहा कि अच्छा अच्छा हरेक को अपना अपना करना पड़ेगा, अभी तक तो ये अपना और पर का दोनों का करने को तैयार था, अब उसे लगता है कि सब मेरे को अपना करना पड़ेगा, क्यों कि अभी तक तो इस बेवकूफ ने मैंने दूसरों का थोड़ा क्या कर दिया और दूसरों से अपना बहुत काम करा लिया, क्यों वो तो मुफ्त में थोड़ी पड़ोसी का काम करेगा, क्लर्क का पड़ोसी क्लर्क का, तो उससे दूना काम अपना कराएगा ना इसका उपकार के बदले में। अब इसको जो दोनों का करता था अब अकेला अपने का काम ही बहुत बोझा लगने लगा, कि क्या है कि अपना काम कि अपने आत्मा को जानना है, क्यों ये अपने आत्मा को मानना कि ये मैं हूं, ये अपना काम है कि भैया ये तो हम 30-30 साल तो निकल गए, अभी तक तो पार पड़ी नहीं, तुम्हारे 25 वर्ष में अटेंड कर लीजिए। क्यों, वो अपना काम तो बहुत कठिन है, तुम तो हमें कोई पराई काम सौंप दो। क्या कोई 2-5 लाख रुपए की जरूरत हो तो फरमाओ, वो हम आपको कर देंगे। वो हमारा चुटकियों का काम है, ये आत्मा फात्मा की बात है, हमारे बस की नहीं है। कैसा विचित्र आदमी है, अपना काम इसके बस की नहीं है और पर का काम करने को कमर कस के तैयार है चुटकियों में, मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा। ऐसे तो आचार्य कहते हैं कि तू क्यों मूर्ख घबराता है, तेरा काम तुझे करना नहीं है, करने का बोझा अपने माथे पर रखना नहीं है। वो तो होता है, होता है स्वयं जगत परिणाम, वो तेरा काम तेरे में होगा और प्रति समय होगा और प्रति समय उसकी उपादानगत योग्यता उसमें है, तो वो उस वक्त काम वो संपन्न गारंटी से होगा ही। क्यों, तुझे कुछ नहीं करना है। तो अभी तो आप कह रहे करना कि जो तुझे जिसे तुझे करने का बोझा नहीं रखना है वो जो 1300 समय में होगा उसी को ये कहा जाता है कि तूने स्वयं का काम किया। क्या समय है, पूज्य गुरुदेव जी ने कितनी किताबें छपा छपा के सारे देश में पहुंचा दी। क्यों, गुरुदेव फरमाते थे ना कितनी तो टोडामल से छप गई, जितनी हमारे यहां से छप गई है, घर घर पहुंच गई। अब हम कहते हाँ गुरुदेव आपने बहुत बड़ा, उन्होंने तो एक अक्षर देखा नहीं, प्रेस देखा नहीं, प्रूफ देखा नहीं, कुछ किया ही नहीं, जो छप गई और आपने उनका विमोचन उनके सामने किया तो उन्हें जान लिया उनने। क्यों, वो जानने का काम तो उनका ही था, वो किया उनने और सारा जगत उनके नाम पर वो सारा काम मरता है या नहीं मरता है। और बहुत लोग जो अब मैंने किया का हम पाले रहते हैं ना, उनका कोई नाम ही तक नहीं लेता कि इनने कुछ किया। वो कहता कर करके हम मर गए हैं और गुरुदेव ने छपा दिया, गुरुदेव ने पहुंचा दी, पीठ पे लाद लाद के हम ले गए। अब आजकल तो टाइप होने लग गया, पहले जमाने में हाथ से लिख के नकल ही करनी पड़ती थी, तो अच्छी राइटिंग जिनकी होती है जो होते थे उन पे हम क्लर्कों से ही काम करवाते थे, अपने लिख दिया वो नकलते थे, तो उनने अपने उसमें ऊपर लेखक लिख दिया, लेखक में के लिखी तो मैं नहीं है। अरे तेरे जो प्रतिलिपि की इसका नाम लेखक नहीं होता है? इसका नाम लेखक नहीं होता कि लिखी मैंने और नाम तुम्हारा। अरे कई भाई तेरे में प्रति समय पर्याय उपाध होगी, कृमि नियमित परिणामी रुतपद मानो जीवा, अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव। तो ऐसा कहके तेरे माथे से वो बोझा उतारा है कि तुझे अपना भी कुछ नहीं करना है। कल तक तो तुम कह रहे थे और आगे अभी आज फिर कहोगे कि हर प्रत्येक देव अपनी पर्याय का करता है, तो अपनी पर्याय तो हमें करना है ना। क्यों, कि पर्याय करने का बोझा नहीं रखना है, तो फिर करना है कि नहीं करना, बोझा नहीं रखने का क्या मतलब कि करें कि नहीं करें, करेंगे तो बोझा रहेगा ही ना फिर। कि नहीं, वो जो होगी स समय में पर्याय या परिणमति सा करता, जो तू स्वयं उस रूप परिणमित होगा तो उस परिणमन का कर्ता तू कहा जाएगा। तुझे करना कुछ भी नहीं है, करने का विकल्प भी कुछ नहीं करना है, कि आत्मा का अनुभव तो करना है कम से कम, ये देह छोड़ने के पहले देह से भिन्न भगवान आत्मा का अनुभव तो करना है ना। कि वो भी नहीं करना है, क्या बात करते हो साहब, वो भी होना है। और जब होना है वो काल नक्की है, और भगवान महावीर के केवल ज्ञान में वो आया होगा कि नहीं, कि तेरे आत्मा का अनुभव तुझे कब होगा, संस्कृत जी साहब होगा कि नहीं, ये ज्ञान में आया होगा कि नहीं, ठीक है आ गया होगा तो बिना किए हो जाएगा, नक्की भी है तो बिना किए हो जाती है। पहले आती थी ना वो लगन, आती थी लगन, आजकल तो वो लगन मगन कुछ कहाँ गायब हो गई, और शादी के एक दिन पहले ही कर लेती है। अरे वो लगन में तो ये लिखा जाता था ज्ञानचंद जी कि आप फला तारीख को फला तिथि को बारात लेके पधारो, वो आमंत्रण पत्र का थी ने, आप तो आज लगन हो कल शादी, बारात तो आ गई, तो बारात को लाने का क्या आमंत्रण पत्र था वो लगन पत्र का, उसमें ऐसा लिखा जाता था कि आप बारात लेकर हमारे यहाँ फला फला तारीख को पधारो। मुझे दूसरी बात कहनी है कि वो जो शहरिया लोग होते थे ना, बिना पढ़े लिखे लिए किसान लोग, तो वो कहते थे कि हमारा पंडित जी कितना बड़ा विद्वान है, आपको पता नहीं, मैं थोड़ा केवल ज्ञानी से थोड़ा ही बहुत कम होगा, सर्व भगवान से कुछ ज्यादा कम नहीं है। कि क्यों? कि वो लगन पड़ता है तो वो ये बता देता है कि इस दिन बारात आएगी, उसी दिन आ जाती है, कैसे पता चल जाता होता है, महीना भर से पहले पता चल, उसको बहुत आश्चर्य होता कि कितना बड़ा विद्वान है, इसे कैसे पता कि बारात किस दिन आएगी, नहीं वो बता देता है और उसी दिन आती है, मुझे कौन समझा है कि वो सहरिया सहरिया मूर्ख है ना। अरे वो सहरिया मूर्ख है और तुम शहर वाले है? तुमको भी ऐसा लगता है कि भगवान महावीर ने कह दिया उसी में हो जाएगा क्यों? अरे भाई इसमें क्या आश्चर्य है, और वो होगा सहज भाव से ही, उसमें तेरे को कुछ भी करना नहीं है, करने का बोझा रंच मात्र भी नहीं करना है, नहीं करूंगा चिंता नहीं रखूंगा तो होगा कैसे। यही तो बात है कि तू समझता है चिंता से होता है, इन सब का जवाब देने के लिए पूरा बोझा आपके माथे से उतारने के लिए अम्मे चंदाचार्य ने स्वयं निमात्म परिणाम ही रुतबद्ध मानो ये शब्द लिखा। तो ये पंडितों को चढ़ाने के लिए नहीं लिखा, विक्रमबद्ध प्रजा लिख दी, अब सब पंडितों का विरोध हो गया, और ये हो गया, वो हो गया, वो उस परम सत्य का उद्घाटन किया है कि तेरे करने का अर्थ क्या है, तू करेगा तुझे करना है उसका अर्थ क्या है, वो जो होना है उसी का नाम करना है, और सद्रव्य की पर्याय को उसका करने का व्यवहार सद्रव्य में ही होगा, परद्रव्य में कभी भी होगा नहीं, ये निश्चय है। अब अपना आगे जो गुरुदेव की बात अपन ने जहां पर पढ़ ली थी उसके आगे पढ़ते हैं। ये बात मुझे बतानी थी कि यहां पर एक पंक्ति में ये अमृतचंद ने क्यों डाला, पेज नंबर 218 दूसरा पैरा, ठीक है। जिस तरह सोने का कंकण आदि पर्यायों के साथ तादात में है, सोने का कंकण आदि पर्यायों के साथ तादात में, सोने का के बाद कोमा लगा लो माने दिमाग में समझ लो, सोने का कंकण नहीं, सोने का कंकण आदि पर्यायों के साथ तादात्म है, ऐसा ऐसा रहे, समझेगा उसी प्रकार सर्व द्रव्यों का अपने अपने परिणामों के साथ तादात्म है। अभी तादात्म जानते क्या होता है? तादात्म संबंध माने जो बिल्कुल उसी रूप है, बिल्कुल किसी अलग नहीं है। ज्ञान और आत्मा का तादात्म संबंध है, अग्नि और उष्णता का तादात्म संबंध है। यदि अग्नि में से उष्णता निकल जाए तो उसे अग्नि कौन कहेगा? तादात्म यह उसी रूप है। अपने परिणामों से उत्पन्न होते हुए द्रव्य के उन परिणामों का कर्ता अन्न नहीं है, वह स्वयं ही है। यहां कहते हैं कि अपने परिणामों से उत्पन्न होते हुए जीव का अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। माने तुम अजीव करता है और जीव में काम हुआ, ऐसा नहीं है। जो जड़ शरीर में शरीर मन वाणी के कार्य होते हैं, माने शरीर में शरीर मन वाणी के कार्य होते हैं। अब ये मन वाणी ये भी वास्तव में शरीर का ही हिस्सा है ना। अब कहते शरीर में, जब शरीर में बोला, पहला शरीर का अर्थ है शरीर मन वाणी और शरीर, ये तीनों का समुदाय, और फिर इनका अलग अलग ये जो काम होते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, वाणी बोलते हैं, आंखों की पलकें झपकती हैं, ये सब जड़ के स्वतंत्र परिणमन हैं। अब तुम कहते हम तो अपने ही तो कर रहे, अपने शरीर का मानता क्या नहीं मानता? ये कहते तेरे नहीं है भाई साहब, उन्हें जीव नहीं करता, क्योंकि सभी जड़ चेतन द्रव्यों का एक दूसरे के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। एक दूसरे को उत्पन्न करे हो ही नहीं सकता। तो अब ये शरीर है, ये सब काय क्यों है? मन वचन काय की जो क्रिया है वो क्या है? शरीर की क्रिया। अब हमको मन वचन काय को कंट्रोल में रखो, योगा योगा करते ना, क्या क्या स्वरूप तो देखो। अपने यहां सबसे पहले मिथ्यात्व, और फिर अवरति, फिर प्रमाद, फिर कसाय, फिर योग बंद के कारण है। और नाश करने का विधि क्या है कि चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व का नाश होता, फिर पांचवें में अवरति का नाश होता, समझ लीजिए, फिर सातवें से ऊपर प्रमाद का नाश होता, फिर दसवें तक के बाद में कसाय का नाश होता, और फिर तेरहवें के बाद योग का नाश होता। ये ठीक है ना? इसमें तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। अब हम कहां से शुरू करते हैं? योगा करो, योगा करो, कोशिश तो करनी चाहिए ना। आपकी बात भी सीख है, वो पढ़ भी लेंगे थोड़ा, हम वो पढ़ भी लेंगे और ध्यान की कोशिश भी करते रहेंगे, दो ही बता दो हमें। क्या दो घंटे आपने कही ना, दो घंटे पढ़ना चाहिए, दो घंटे पढ़ लेंगे तो दो तीन घंटे हम तक ध्यान कर लेंगे। लेकिन भैया ध्यान व्यान करने की चीज नहीं है, हमने कब की ध्यान कर लेना? घबराना नहीं, पूरी बात समझना। योग सबसे बाद में होता है, चौदहवें गुण स्थान में होता है। अब तू पहले से शुरू करेगा उसे, योगा से शुरू करेगा। फिर क्या करेगा? शरीर की हड्डी को सीधी करेगा। तू करेगा क्या? डॉक्टर करेगा। जिसकी टेढ़ी है ना, कुबड़ निकली है, ऊंट की निकली है, तोतली आदमी की निकली है, उसे तो डॉक्टर भी नहीं कर पा रहा, तू क्या करेगा? तेरी तो सीधी है ही। क्या कह? ये मनमचन काय को, इसको कह तू इसका करता नहीं, वो तो कह रहे परद्रव्य है, तू इसको कर नहीं सकता, और ये मनमचन काय को काबू में करने की बात करते। ऐसा करो, सीधे रहो, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल सीधी। अरे द्रव्य संग्रह में लिखा है, क्या लिखा? क्या माँ चित्थई, माँ चित्थई माँ जम्पई माँ चिंतई, कि चेष्टा मत करो, बोलो मत और सोचो भी मत। सोचो नहीं, बोलो नहीं, अरे चेष्टा भी नहीं करो। ये ध्यान के स्वरूप में बताया, तो वही तो कह रहा क्या? हम ये सब रोकेंगे। अरे रोकेंगे तो वो करना ही हो गया ना, तो एक चेष्टा को रोकता है, दूसरी चेष्टा को करता है। ऐसे हिलने रूप चेष्टा को रोकता है और अकड़ने की चेष्टा को करता है। क्यों? ऐसी टेढ़ी चीड़ की हड्डी की चेष्टा को रोकता है और सीधी चेष्टा को करता है। उनने ये कब कहा था? उनने तो कहा चेष्टा तुम करो ही नहीं। क्या तुम देह की क्रिया तुम जानते हो कि मन वचन काय चंचल सबसे ज्यादा किसके होते हैं? किसके होते हैं? अरहंत भगवान के होते हैं। सुना कभी? योगों का कंपन, आत्म प्रदेशों का कंपन अरहंत भगवान के सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अनंत वीर प्रकट हो गया, रोकने वाला तो कोई है नहीं कंपन को। और गजब की बात यह है कि उस कंपन को वे रोकने का रंज मात्र भी प्रयत्न नहीं करते। जब वो अपने आप समय पे सारघातिया करने का अभाव होता है, क्यों अभी होता है? उनका अभाव हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। जिस काम को अरहंत भगवान भी नहीं करते, जो अपने आप नष्ट होता है उस समय में, अब उसको तुम अभी से शुरू करते हो और शरीर की चेष्टा में नहीं, शरीर की चेष्टा में बस खत्म। उस शरीर की चेष्टा को ध्यान कहते हो। अब तो ध्यान के साथ प्राणायाम भी जुड़ गया और प्राणायाम के साथ रामदेव जुड़ गए। रामदेव के साथ छह छह घंटा बैठे रहते हैं और बाकी जो बचता है तो घर पे लगे हैं रामदेव आज। जिन देव गायब हो गए तो रामदेव आगे रहे। और फिर रामदेव का च्यवनप्राश भी खाते हैं साथ में। रामदेव ने दुकानें खोल दी, अकेली उसी जी ने व्यायाम कराने को, योगा कराने जी ने बाद में सब क्यों अरबपति योगी बन गए। अब गृहस्थों में तो जिसकी तमन्ना होगी अरबपति बनने की तो बनने की, लेकिन हमारे संतों में सबसे ज्यादा बड़ी तमन्ना हो गई। क्या करें? देखो वो ये कहते हैं कि शरीर की चेष्टा, ये शरीर की चेष्टा ही कुछ ध्यान व्यान है ही नहीं। वो तो अपने आत्मा का उपयोग को अपने आत्मा में ले जाने का क्या काम है? तो वो कहता हाँ ठीक है ठीक है, हमने यही मान लिया आपकी, लेकिन उसके पहले तो कुछ करना पड़ेगा ना। ऐसा करें जो हम जो तुम्हारा आत्मा का उपयोग आत्मा में ले जाएं, तो बैठ के करेंगे खड़ी होगी, लौट के फिर शरीर पे आ गया। मैंने अपने ध्यान की किताब में खोज के नमन खोज बहुत खोज खाज करके एक ऐसा जगह लाई है कि जहां लिखा है कि ध्यान लेते लेते भी होता है, लेते लेते करना इसके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिनने किसी चेष्टा से शरीर की वो ध्यान को जोड़ दिया है उनको बताने के लिए मैंने बता लाया है, प्रमाण दिया है। कुछ मतलब नहीं है, कोई नहीं है। हम कहते हैं कि आत्मा का उपयोग आत्मा में जाएगा वो ध्यान है। वो कहता है कि ठीक है कैसे कैसे करूं, शरीर को कैसे रखे, आंखें बंद रखूंगा खुली? कि आंखें खोलने और बंद करने वाला तू होता कौन है? आंख को खुली रहनी होगी तो खुली रहेगी और बंद होनी होगी तो बंद होगी, वो तो तेरे लिए परद्रव्य है ना। तो लिखा है कि एक दूसरे देव का करता नहीं है। पहले वो बताओ लौट के वहीं पहुंच जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, हम तो आपकी बात मान लेते हैं। वो उपयोग को यहां लाने के लिए हमने बहुत कोशिश करी पकड़ पकड़ के, लेकिन आता ही नहीं है, आप बता दो ना। अरे भैया वो कोशिश से आने की चीज नहीं है। क्या क्यों राजेंद्र जी आपकी उम्र क्या है? अभी घबराना नहीं, बता दो, सच्ची बता दो, मैंने पक्का नहीं। 60 वर्ष के हो गए? चलो मान लो 60 के हो गए। अब मैं पूछता हूं कि 70 वर्ष के कितने दिनों में होंगे? कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश करें तो 5 वर्ष में हो जाएंगे। 5-10 तो बहुत होते हैं साहब, हमें बताओ कि 60 से 70 वर्ष के कितने दिन में होंगे? 1 साल में हो जाएंगे। अरे भाई वो तो 10 वर्ष में ही होंगे, और 10 वर्ष में होंगे तो ये अपने ही आप हो जाएंगे। इसे इसमें क्या करना है मुझे तो बताओ, मुझे 70 वर्ष का होने के लिए क्या करना है? अरे हरेक लोग आलोक में आकर के पूछते हैं ना, आप इतनी उम्र हो गई है, आप ऐसा हो गया, आपके स्वास्थ्य का लाभ क्या है? आप अभी तक मरे नहीं, 90 वर्ष के हो गए, तो आप बताइए उसका रहस्य क्या है, जनता को पता चले तो उनका रहस्य बता दूं क्या? बता दूं, क्योंकि अभी तक हम मरे नहीं इसलिए जिंदा हो गए, मर जाते तो नहीं पता। सच्ची बात तो यही है नहीं मरोगे तो तुम भी हो जाओगे इसमें तो कोई बात है ही नहीं। एक बेचारा बुजुर्ग आदमी, कमर नब गई थी, हाथ में लाठी लेके ऐसे धीरे धीरे जा रहा था। कुछ लड़के कॉलेजी मजाक में, अरे दादाजी दादाजी नमस्ते नमस्ते। पहले एक प्रश्न है कि बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, कि आपने ये धनुष कितने में खरीदा? समझना धनुष का, समझे ना, कमर टेढ़ी और लाठी सीधी, धनुष होता ना ऐसे कमान टेढ़ी और वो ऐसा रस्सी होती है सीधी, तो लाठी सीधी और कमर टेढ़ी तो धनुष बन गया ना। बोले दादाजी आपने ये धनुष कितने में खरीदा? तो बोलो बेटा, एक तो ये दिन तुम पाओगे नहीं, और यदि पा लिया तो मुफ्त में ही मिल जाए। किसी को कितने वर्ष का होने के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ता है? तो वो सम्मा दर्शन की पर्याय तो जिस समय आनी है उस समय आएगी, तो तुम्हें क्या प्रयत्न करना है आज से? बोलो कि जब तक तुम प्रयत्न करते रहोगे तब तक वो सम्मा दर्शन पर्याय नहीं आएगी, नहीं आएगी और नहीं आएगी। कि हमने तुम्हारे कब क्या बिगाड़ा है जो हमें तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देते हो? अरे आशीर्वाद नहीं दे रहे, ना श्राप दे रहे हैं, हम तो वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं कि तुझे अपने में भी कुछ नहीं करना है। पर का तो तुम कुछ करता ही नहीं है, और अपने में जो निश्चय से भी करता कहा है, अशुद्ध निश्चय में से रागा दे का करता, एक देश शुद्ध निश्चय से एक देश शुद्ध पर्याय का करता, पूर्ण शुद्ध में से केवल ज्ञान आदि का करता, और परम शुद्ध निश्चय में से इन तीनों का करता नहीं। क्यों ऐसा ही है ना? तो तुझे इसमें करना मरना कुछ नहीं है, ये तो होना है, तो इसका तुझे करना कहा जाएगा और इसका करना नहीं कहा जाएगा, बस इतनी सी बात है। देखो देखो, एक जीव को दूसरे मरते हुए जीव की दया पालने या रक्षा करने का भाव हुआ, उसी समय उस जीव की रक्षा हो गई, अर्थात वह मरणासन्न जीव बच गया। यहाँ कार्य कारण की खोज करें तो अन्य जीव की रक्षा होना अर्थात उसका जीवित रहना यह कार्य है। उस कार्य का कर्ता कौन? दया पालन करने वाला जीव या जो जीवित रहा उसकी उपादान गति। पिता बोला बिल्कुल, मरने वाला था और मैंने दवाई भी हो बचा ली। अब मरने वाला था ये तूने कैसे नक्की किया? कि तुम देखते तो तुम भी कह देते। अरे देख के नक्की नहीं होता, उसे केवल ज्ञान में देखना पड़ता। क्यों? वो केवल ज्ञानी ने उसकी मौत उस वक्त देखी थी, तेरे देखने से काम चलेगा। अरे वो तो अपनी उपादान के देवगता से बचा है और जब भी मरेगा वो अपनी उपादान के देवगता से मरेगा, इसमें तेरा कुछ नहीं है। देखो ये दया पालने की बात लिखी है, बहुत खतरनाक बात है। सारा गुजरात तो इसके पीछे पागल हो रहा है। जीव दया इतना बड़ा धर्म है कि हम अमेरिका जाते हैं ना तो सैकड़ों लोग गुजराती संत लोग वहां जाते हैं और वहां से जीव दया के नाम पर करोड़ों डॉलर लेके आते हैं हर साल। जीव दया और जीव दया यहां ला करके फिर पांजरा ढोल खोलते हैं। मतलब पांजरा ढोल क्या बोलते हैं अपने यहां, मैं उस शब्द को नहीं बोलने जा रहा, क्या समझ में। वो खोलते हैं जो गाय माए को जहां पाला जाता है ना, वो खोलते हैं और खोलकर फिर उसमें उसे रखते हैं, नीचे संगमरमर जलाते हैं, फिर ऊपर पंखा लगाते हैं, उसमें एसी लगाते हैं। क्यों जी भाई, ठीक है, इतना इतना। अरे हमारा एक शब्द बोलना मुश्किल है। अब यहां देखो क्या लिखा है, अपने शास्त्रों में क्या लिखा है, अरे वो सिद्धता के विधान में क्या लिखा है कि जीव दया का भाव मोहिनी कर्म के उदय से होता है और मैं जीवों की दया पाल सकता हूं, ऐसी मान्यता दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व के उदय से होती है। इसका कार्य और हिंदी के विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दया की परिभाषा लिखी तो क्या लिखा कि दूसरे के दुख को देखकर जो दुख हमें होता है उसे दूसरे के दुख को दूर करने के भावपूर्वक उस दुख को दया कहते हैं। ऐसा लगा एक अजैन विद्वान ने। अरे इतना बढ़िया है, अरे उसने क्या किया, उसने गजब अपने संत कवि 250 वर्ष पहले लिख गए। पर दुख को जो देख के आता ना, ऐसा छंद आता है सिद्ध चक्र विधान की पूजन में, एक छंद आता है कि पर दुख को जो देखकर उसे दूर करने के भाव पूर्वक जो दुख होता है उसे दया कहते हैं। हे भगवान, तुमने उस दया का नाश किया है इसलिए मैं तुम्हें अर्घ चढ़ाता हूं, दया करने वाले को नहीं। दया की नाश तो उस वक्त उसने जो ओंगरी लिखी उसमें लिखा था ओ कि अत्यंत निर्दयाय नमार्घम निर्पामति स्वाहा से उन सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूं जो अत्यंत निर्दयी हैं। मैंने भी बहुत सत्यक विधान कराए हैं, 100 से कम तो नहीं कराए होंगे, और उसमें जयमाला का अर्थ करने के लिए मेरे लिए बुलाया जाता था। वो तुम्हारी किताब छपी है ना, कहना सिद्ध भक्ति, उसमें दिया है मैंने, तो उसमें ये जो छंद था उसमें उत्तम सिंह जी ये ओंगरी लिखी थी और ऐसे ही छंद में लिखा था। तो मैं उसको बहुत इनलाज कर करके समझाता था कि बाबू भाई से सबसे मेरा पहला परिचय हुआ था तो सिद्धक की जयमाला का अर्थ करते करते ही हुआ था। तो पंडितों को बहुत चिंता होगी ये सब बात हो गई, तो उनने वो हटा उसमें से निकाल दी, छंद बदल दी, मैंने ओंगरी बदल दी। लेकिन इतनी कृपा करी कि अत्यंत निर्दयाय की जगह दया रहता है नवा लिख दिया, मैंने दया शब्द को हटाया नहीं। सो तुम दया निवार अंत में छंद में ऐसा था, उसे हटाया नहीं और ओंगरी में क्या लिख दिया। अब मैं तो उस वक्त किताबें छपाता नहीं था क्या, तो भाई बस जो बाजार में मिलती थी किताबें उन्हीं से मुझे करानी पड़ती थी। तब बस वो किताब आ गई और मैं ये कहता था अत्यंत निर्दयाय नमा, लेकिन उसमें देखा था कि सब कहेंगे पंडित जी इसमें तो ये है ही नहीं, इसमें तो ये है ही नहीं। अब मैंने देखा मैं गलत, कोई फर्क नहीं, दया रहता है तो कहा ना, दया से रहत तो कहा, लेकिन सिद्ध भगवान को अत्यंत निर्दय कहते हमें तो बहुत अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये है ना, है ऐसा कहने में तुझे अच्छा नहीं लगता क्यों? हेलो, तुम पुकारो, कितना पुकारो, आओ तुम्हारी आ जाए बचाने के लिए, नहीं आ रहे तो हम क्या कहेंगे? नहीं आ रहे ना। अच्छा, फिर वो पूछा, मैंने ऐसा कहना शुरू किया, बहुत दिन तक यहां जी ऐसे व्याख्यान तुम्हारे दीक्षा में भी करे होंगे कि देखो यहां पहले अत्यंत निर्दया था, अब दया रहता ये कर लिया, कोई बात नहीं, आखिर मोरी तो वहीं पड़ी, पंचों की बात माथे से, मैंने दया से रहते ही तो कहा। हमें ऐसा व्याख्यान करने लगा तो लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो फिर बदल दिया, और अब की बार दोहा भी बदल दिया, और उसमें सो तुम्हें मोह निवार, दया निवार की जगह मोह निवार कर दिया, और नीचे लिख दिया मोह रहता है नमार का। अब आजकल वो चल रही है, अब तुम एक प्रश्न और कर सकते हो जो मैं ही निपटा देता हूं अभी, कि तुम्हारे यहां से छपी में भी तो यही लिखा है, हम क्या करें, हम क्या करें, कुछ तो रखना ही पड़ेगा ना। हमारे लोग दादाजी नरेंद्र, दादाजी तो ठीक है, दादाजी क्या करें, चलो तुम्हें जो करना होगा। ये मैंने कहा इतिहास में तो रह जाए, इसलिए मैंने वो जो सिद्ध भक्ति में ये सब लिख दिया, ये सब लिख दिया, पहले का, बाद का, अभी का, ऐसा वैसा, एक इतिहास तो सुरक्षित रहे है? और अब मुझे उतना डर भी नहीं रहा है, क्योंकि अब तो किनारे पे आ गई ना गाड़ी क्यों अब तो एक शब्द तो रह रहा है सामने, देखो क्या है, पर ये लिखा ना गुरुदेव ने इसमें, देखो एक जीव दूसरे को मरते हुए जीव की दया पालने या रक्षा करने का भाव हुआ, उसी समय वो जीव की रक्षा हो गई, माने वो मरणासन्न जीव बच गया। यह कार्य कारण की खोज करें तो जीव की रक्षा होना और उसका जीवित रहना यह कार्य है, उस कार्य का कर्ता कौन, दया पालने वाला जीव या जीवित रहा उसकी उपादान का योग्यता। यहाँ आचार्य कहते हैं इस कार्य का कर्ता रक्षा करने में के भाव वाला जीव नहीं है, एक जीव के दया भाव के कारण दूसरा जीव बचे ऐसा तीन काल में भी संभव नहीं है। अरे पूज गुरुदेव श्री तो अपने ये फरमा रहे, अब इसके लिए जो प्रमाण अपन को मिले उनको अपन को और जिंदा रखना चाहिए कि खत्म करना चाहिए, शास्त्र के मिले है? कहीं से भी मिले, पूजनों में मिले, आगम में मिले, शास्त्र में मिले, वो सब जगह से। अब आगे कहते हैं कि इनमें कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होने पर अजीव एवं जीव का कर्तापना भी सिद्ध नहीं होता, अतः शरीर की हलन चलन रूप क्रिया का कर्ता जीव को मानना ठीक नहीं है। जिस प्रकार आंखें मात्र पर को देखती ही हैं, वे किसी का कुछ करती नहीं है, उसी प्रकार जीव मात्र पर को गड़बड़ हो रहा है, पर को मात्र जान सकता है, पर का कुछ करने का कार्य नहीं कर सकता, करता ही नहीं है। यह बात विस्तार से 320वीं गाथा में आने वाली है। अतः अजीव को जीव का कर्मपना सिद्ध नहीं होता, ज्ञाना वर्णादि कर्मों का जो बंध होता है वह जीव का कार्य नहीं है। अरे ये पुण्य पाप के भाव, दया दान वित्त आदि के विकल्प जो होते हैं वे वस्तुतः जीव के हैं ही नहीं। अब दया दान वृत ये सब आ गया, तब बाहि में जो देगी क्रिया रूप है। मेरी आंख में आज थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो दिखने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि विकारी परिणामों में चैतन्य का अभाव है, निश्चय से वे विकारी परिणाम अरूपी व अचेतन है। भाई यह तो सिद्ध ही है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, सारे जगत में, अनंत पदार्थों की प्रत्येक पर्याय अपनी क्रमबद्ध के अनुसार ही होती है। उसमें अन्य द्रव्य गुण पर्याय की किंचित भी अपेक्षा नहीं है, अन्य वस्तु है ही नहीं ये बात नहीं है, परंतु वस्तु कार्य रूप से परिणत होने में अन्य वस्तु की अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। अपेक्षा मैंने सहयोग किया अपेक्षा, आ अन्य द्रव्य से निरपेक्ष कर्ता कर्म का स्वरूप होने से जीव को अजीव का कर्ता कर्म बना सिद्ध नहीं होता। देखो ये गुरुदेव का भी कोटेशन बड़ा है, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है, थोड़ा कोई तुम पढ़ के बताओ थोड़ा पांच मिनट। अच्छा अच्छा है, मैं चाहता हूं पढ़ा जाए पूरा, वहां खड़े होके बताओ।
जीव के परिणाम में जीव का रूप है, काम जी अपने बराबर का करता है और अजीब का अकलता है। इसी दौरान जगत के अनंत धर्म अनंत बने के तीनों काल जैसे हैं, भाई जीव अपने परिणाम को भी तथा अन्य धर्म के परिणाम को भी करे ऐसा पदार्थ का स्वरूप नहीं है। इस कारण जीव
जो पर का आकर्ता ठहरता का अर्थ क्या है, इतना विस्तार से गुरुदेव सिंह ने बताया। मैं चाहता था कि आज ये पूरा कोटेशन अपन पढ़ लें, तो अगले में आगे बढ़ना चाहता था। इसके बाद एक मर्म की बात मैं अंत में कहकर समाप्त करता हूं कि इसमें आपने नक्की है ना, सब एक एक समय का सब नक्की है। अब हमारा जो भाव है कि तो मुझे जल्दी से जल्दी समय दर्शन हो जाए, ये भाव उस वस्तु स्वरूप के विरुद्ध नहीं है, उस पर्याय को बदलने का भाव नहीं है। जो पर्याय अनादिकाल से अनंत काल तक की निश्चित हैं और जो केवल ज्ञान में झलकी हुई हैं, तो ये उसे बदलने का भाव हुआ ना, तो ये कैसे धर्म हो सकता है। अब इसमें दो भेद हैं, एक तो ऐसी हमारी श्रद्धा होना कि हम प्रयत्न करके उसे बदल लेंगे, कुछ जल्दी से जल्दी ये काम कर लेंगे, ये श्रद्धा तो महापाप है, और ऐसा विकल्प आना वो अल्प है, अल्प पाप है ऐसा समझ लेना, लेकिन वो ज्ञानियों के भी हो सकता है, क्योंकि जो उसे लिए परम उपाधि लगता है मोक्ष, वो शीघ्र मिले ऐसा विकल्प आ सकता है, ऐसा भाव बन सकता है। ख्याल में आई ना, वो इतना बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन यदि श्रद्धा में भी सचमुच ये बात है कि मैं अपने प्रयत्नों से कुछ उस पर्याय में फेरफार कर लूंगा, तो उस क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति नहीं हुई, क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति नहीं हुई तो सर्वज्ञता की केवल ज्ञान की स्वीकृति नहीं हुई, केवल ज्ञान की और सर्वज्ञता की स्वीकृति नहीं हुई तो अनंत भगवान की स्वीकृति नहीं हुई, और सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा की स्वीकृति नहीं हुई। हमें भी तो ऐसे ही केवल ज्ञान होगा ना, इसमें सारा लोकालोक झलकेगा। अभी तुम्हें तो वो पसंद नहीं है, क्योंकि किसी का बहुत काल बाद मोक्ष लिखा है, तुम्हें तो जल्दी करना है। तो ऐसा नहीं, ये आप समझो कि वस्तु का स्वरूप कितना महान है और ये जगत को आसानी से स्वीकृत नहीं होगा, जगत को पीछे नहीं पड़ना कि जगत मानेगा तब हम मानेंगे, ऐसा भाव होना बहुत अच्छी बात है। तीर्थंकर के लिए बंद का कारण है कि सारा जगत ये समझे, लेकिन ये बंद का कारण है, ये मोक्ष का कारण नहीं है। इसे शांत भाव से इस परम सत्य को स्वीकार करके हम कोई फेरफार का विकल्प तोड़कर हम स्वयं में जाएं, ऐसी मंगल भावना से मैं अभी की बात समाप्त करता हूं।